मुझे सत्य मानेंगे नहीं, मुझे मन में कभी नहीं आएगा कि मैं उनसे बात करूंगा, तो चलो तुम्हारे माध्यम से उनसे बात कर लेता। तो भगवत गीता में जैसे कि आप जानते हो टोटल 18 चैप्टर्स हैं, उनमें से ऐसा ज्ञानी सब बताते हैं कि जो शुरू के 6 चैप्टर हैं, शुरू के 6 अध्यायों में कर्म योग से भक्ति योग तक आने की एक दिशा बताई जाती है, और अंत के जो चैप्टर हैं उसमें ज्ञान योग से भक्ति योग तक आने की दिशा बताई जाती है। वास्तव में शुरू से लेकर आखिर तक अगर कुछ भगवत गीता में है तो क्या है, भक्ति योग ही है। और सेंटर जो है, जैसे बताया हमने कि एक बहुत ही बहुमूल्य खजाना जो होता है, एक बहुत ही सुंदर तिजोरी में होता है, एक ज्वेलरी बॉक्स जो होता है, ज्वेलरी जो होती है वो ज्वेलरी बॉक्स में होती है, उसी तरह से शुरू में जो 6 अध्याय है वो उस बॉक्स का बेस है, अंतिम जो 6 अध्याय है वो उसका ढक्कन है। और वास्तविक खजाना क्या है, 20 के 6 अध्याय, अर्थात अध्याय नंबर 7 से लेकर अध्याय नंबर 12 तक। और इन 6 अध्यायों का भी जो कंक्लूजन है कि भक्ति में कैसा भक्त होना चाहिए और किस तरह का उसका आचरण होना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण पूरा भक्ति योग का निचोड़ जो देते हैं वो किसमें देते हैं, अध्याय नंबर 12 में जो हम पढ़ रहे हैं। भक्ति योग का मतलब पता होना चाहिए हमें। भक्ति का मतलब होता है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना। सब लोग बोलते ना भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, भगवान ने भी कह दिया भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि केवल भक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को तो 11वें चैप्टर में भी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा, ना हम देना ना तपस्या ना ज्ञान ना चीज है, तो केवल ये भक्ति शब्द ही काफी है कि मैं तिलक लगा के आगे मैंने कंठी पहन ली, मैंने माला करना स्टार्ट कर दिया तो मैं भक्त हो गई, अब प्राप्त कर दिया कृष्ण को। क्या भक्त बनने के लिए कोई क्वालिटीज भी होनी चाहिए, भक्त के अंदर कुछ ऐसा तो हो जो ये भगवान जो कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो उस प्यार करने वाले के अंदर कुछ तो क्वालिटी भी होनी चाहिए ना, नहीं बस खाली ये तिलक, ये तो औपचारिकता है। ये अच्छा है कि हम बाह्य रूप से भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, हम वैष्णव स्वरूप धारण कर, लेकिन वो क्वालिटी वो गुण अगर डिवेलप नहीं होते हैं तो केवल हम ही भक्त कहलाएंगे, वो हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि यहाँ पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कहीं ये नहीं लिखा कि जो तिलक लगाता है कंठी पहनता है, जो हरिनाम शोल ओढ़ता है, जो माला को उठाता वही में मुझे प्रिय है। तो सबसे पहले इस चैप्टर से हम थोड़ा जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा सुनेंगे कि पहले श्लोक में तो अर्जुन ने पूछा, भगवान तुमने कहा कि मैं भक्ति से प्राप्त होते हो, तो भक्ति तो बहुत तरीके से होती है, कुछ लोग निराकार की भक्ति करते हैं और कुछ लोग साकार की भक्ति करते हैं, तो एवं सबसे युक्ता भक्ता स्वयं परिपासते, जो कंटिन्यूस तुम्हारे साकार रूप की पूजा करते हैं वो, और ये सब यक्ष अव्यक्तम देशम के योगवित्तम, और जो निराकार की पूजा करते हैं उनका लोगों से अधिक श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने कुछ नहीं छुपाया और एक ही श्लोक में एकदम क्लियर कट बात बता दी, एकदम एकदम आसान सरल और समझ में आने वाला उत्तर भगवान ने कहा, मैया वेश्य मनोयमा, मेरे यहाँ सामने अर्जुन खड़ा है और भगवान अपनी ओर इशारा करते हैं, मैया वेश्य मनोयमा, मेरे इस साकार स्वरूप में जिसका मन लगा हुआ होता है नित्य योग्यता उपासक है, वो कंटिन्यूअस मेरी उपासना करता है। उपासना का मतलब भी क्लियर होना चाहिए, मेरे पास आकर अपनी मन बुद्धि मन करम वसन से मेरे ही विषय में बात करता, मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, नित्य योग्यता उपासक है। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो भक्त के अंदर होती है वो क्या है? श्रद्धा के साथ जो मेरी सेवा करता है, श्रद्धा है उसके अंदर। और श्रद्धा का मतलब भी क्लियर होना चाहिए एक बार फिर, श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत है। कि जो ये जानता है कि मेरी भक्ति करने के अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं, तीनों लोकों में 14 भवनों में कोई ऐसा नहीं है जो उनका कल्याण कर सकेगा, उनके अंदर ये श्रद्धा है कि मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ और कृष्ण का नाम इतना कल्याणकारी है, चाहे मेरे ऊपर कितना भी बड़ा संकट आए, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आए, तो ये कृष्ण का नाम मुझे उस मुसीबत से अवश्य पार करेगा। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। और ऐसा जो है भगवान के तो वो तो परफेक्ट है। मेरा ओपिनियन ये है, मेरा मत ये है, वही सबसे श्रेष्ठ है। तब अर्जुन के मन में आया होगा, अरे भगवान ने तो सिर्फ अपने भक्तों की बात की और जो निराकार की पूजा करते हैं उसके विषय में तो कुछ नहीं कहा। तब भगवान ने कहा, ये तो अक्षरम परिलेशम अव्यक्तम परियुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च अचरम ब्रह्म। लेकिन अर्जुन ये अनिर्देशम, वो जो अक्षर है, निराकार है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, वो हर जगह पर है और कुंठस्थ है, एक जगह पर स्थित है, उसको प्राप्त करना कठिन है। और जो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, हर एक जीव में अपने आप एक ही सम बुद्धि रखता है, ते प्राप्तवन्ति मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त करता है, सर्वभूत हिते रहता, क्योंकि वो सब जीवों का हित करना जानता है और जानता है कि प्रत्येक जीव में मेरा ही प्रकाश है। तो अर्जुन ने कहा, फिर तो बस ठीक है ना, दोनों इक्वल है, आखिर में तो तुम्हें प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं, इक्वल रास्ता नहीं है ना, प्राप्ति कोई मेरी है लेकिन रास्ते में कठिनाई है। जो देहदारी है उसके लिए निराकार की पूजा करना बहुत कठिन है, इसलिए क्लेशो चिंतरस्तेषां, ये जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा कठिन है। इसकी बुद्धिमान वही है जो उसी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर रहा है और रास्ता भी सरल उठाता है। और भगवान भी ये भी बता देते हैं कि जब आसान रास्ता है तो बुद्धिमान वही होगा ना जो आसान रास्ते के पास से गुजर के जाएगा। तो ज्ञानी लोग जो निराकार की पूजा करते हैं वो भले ही कितना ही अपने आप को ज्ञानी 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 बोलते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान तो ये डिक्लेयर कर देते हैं एक भक्त ही ज्ञानी है, क्योंकि भगवान ने कहा, कह दिया, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि हजारों जन्म बहुत सारे जन्मों के बाद जो बहुत ज्ञान प्राप्त कर देगा ना, तो ज्ञान के रास्ते से क्या करेगा, माम प्रपद्यते, फिर वो मेरी पूजा करना शुरू कर देगा। तो फिर उसके बाद भगवान ने कहा, वो रास्ता कठिन है लेकिन जो उस रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि माता जी इसको आप अगर बाद में पूछा करोगे तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यस्य मत्त्वा, यानी कि वो जो सारे कर्मों को मेरे लिए त्याग देता है, मतलब सारे कर्मों का जो रिजल्ट है वो मुझे त्याग देता है। अनन्य नैव योगिनः माम ध्यायन्त उपासते, और अनन्य जैसे हमने पिछले वीक में पढ़ा था कि वो अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता है, भगवान को एक ही चीज चाहिए आपसे और वो है ऑनेस्टी। आप अगर ऑनेस्टी भगवान की भक्ति करते हो, अनन्य मतलब कृष्ण आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं। जब हम सब सहारों को छोड़कर कृष्ण के पास आते हैं तो भगवान कहते हैं फिर उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्त अपनी ओर से बस इतना ही कर सकता है कि सारे सहारों को छोड़कर मेरी शरण में आएगा, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या करूँगा, मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरापार्थ मैया विंशित तेषाम् अहम् समुद्धर्ता। फिर मेरी जिम्मेदारी है उसे किस तरह से मैं भाव सागर से पार उठाता हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ के उसे भाव सागर से पार लगा लूंगा। अर्जुन ने कहा इसमें बहुत देर लगेगी। भगवान ने कहा देर किस बात की, देर तो तुम्हारी ओर से होती है, देर तो भक्त की ओर से होती है, सरेंडर करने की देर है। भगवान ने कहा भवामी न चिरापार्थ, तुम्हारी ओर से यदि पूर्ण सरेंडर हो जाता है, सब समारोह को छोड़कर तुम मेरी ओर आ जाते हो, फिर न चिरा मेरी ओर से देर नहीं होगी, इंस्टेंट उसे अपने पास बुला लूंगा। और मैया वेशित चेतसा, लेकिन बस इतना होना चाहिए चित्त में मेरे अलावा और किसी का पकड़ नहीं होना चाहिए, चित्त जो है वो मुझ में आविष्ट होना चाहिए। तो फिर भगवान ने इतना बताने के बाद अब भक्ति में अगर आप सबसे श्रेष्ठ कैसे हो, अगर सबसे श्रेष्ठ नहीं बन सकते तो उसके बाद क्योंकि भगवत गीता भगवान ने हम सबके लिए बताई है। अब हम जिस स्टेज पर हैं वहीं से भगवान हमें स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि भाई अगर आप इस तरह से भक्ति नहीं कर सकते तो मैं आपको स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 5 श्लोकों में 1 से लेकर 12 तक भगवान बताएंगे कि भक्ति की सीढ़ी पर आप कैसे आगे आते हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो कार्य है, बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, वो करने के लिए थोड़े ना हम यहाँ पर आते हैं, है ना। यहाँ पर हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन तो चाहिए होता है, और वो भी मुझे लगता है 50 से 90% कहीं और होता है, 10% भी यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान बताते मैया जिसका मन मेरे अंदर लगा हुआ होता है और मई बुद्धि निवेश, ये दो बातें याद रखिएगा, ये बार बार आएंगी। पहले क्या, आपका मन मुझ में लगा हुआ होना चाहिए और आपकी बुद्धि भी मुझ में लगी हुई होनी चाहिए। घर में जब बैठते हैं तब क्या भगवान में मन लगेगा, मंदिर में बैठते हैं तो भी मन इधर उधर घूम रहा होता है ना। मन उसी में लगेगा जिससे आप सोचते हो कि मुझे प्यार है, बस इतना ही है। सत्य यही है कि मन उसी में लगता है, बुद्धि उसी में लगती है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि इससे मेरा कुछ भला होगा। और सबसे बुरी, सबसे दुखदायक बात क्या है कि हम खुद को भी नहीं जानते, है ना। अगर हम खुद को जानते होते ना तो फिर मन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा ये है, ये बस भगवान ही तो मेरा नहीं है। सिर्फ यही रह जाता है कि भगवान के साथ मन नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं मैया आदर्श मई बुद्धि निवेश के मन मुझ में लगा हो और बुद्धि मुझ में लगी हो, निवसिष्यति मैयैव। अगर इस तरह से आप मुझ में निवास करोगे तो अत ऊर्ध्व न संशय, फिर मैं क्या करूँगा, तुम्हें अपने लोक में लेके आ जाऊंगा जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी हम भगवान से ये भगवान से कंप्लेन कर बैठते हैं कि भगवान इतना दुखमय संसार बनाने की जरूरत क्या थी? जब से आए हैं दुनिया में केवल दुखी लोग तो देखा, हम दूसरों के लिए कितना करते हैं, सबके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए तो हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, लेकिन कहीं से हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता है। हर कोई के मन में एक न एक दुख भरी दास्तान है ना। हर एक जीव जो है यहाँ पर आया है और सोचता क्या है कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करता है ना, मेरे को पता नहीं क्यों भगवान इतना सारा दुख देते हैं, आखिर इतना भगवान ने दुखदायी संसार बनाया क्यों है। भगवान अगर अच्छे हैं, भगवान अगर कृपालु है, भगवान अगर मर्सीफुल है, भगवान अगर करुणा के सागर है, तो भगवान को हमें इतना दुखदायी संसार तो नहीं देना चाहिए। और भगवान इस संसार को कितना दुखमय बनाते, अगर हम न्यूज देखते हैं तो हर एक क्षण में हमको दुखदायी एक सबक न्यूज मिलती है ना। कहीं पर पता चलता है स्कूल में बॉम्ब फट गया और इतने सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, कहीं पर पता चलता है इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और इतने सारे बेगुनाह मारे गए, कहीं पर इतनी करप्शन होती है, टैक्स होते हैं, ये होता है वो, हर जगह पे दुख ही दुख तो है ना। तो कभी कभी तो मन में यही आता है ना कि भगवान इतना ज्यादा दुखी संसार बनाने की क्या जरूरत थी, कुछ अच्छा बनाते ना, तुम तो कितने अच्छे हो। तो भगवान कहते बनाया है मैंने अच्छा, मैंने बहुत अच्छा संसार बनाया है जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दुख है ही नहीं वहाँ पर, कोई कलमश नहीं, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए ये अलग जगह है जिसके लिए भगवान ने कह दिया दुखालय अशाश्वत है, ये हमारे लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई सुंदर सृष्टि बनाई नहीं, भगवान ने कहा न रस भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यह तत्वा न निवर्तन्ते तत्थाम कर्म कम, मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर केवल सुख ही सुख है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल आपको सुख देने के लिए वो जगह बनाए, लेकिन तुम अपने आप को वहाँ जाने के लिए योग्य तो बनाओ है। जैसे हमने हमारा घर हमने कितना अच्छा बनाया होता है, कितना सुंदर होता है घर का वातावरण, क्या किसी क्रिमिनल को आप अपने घर में रहने दोगे? कोई जो दहशत गर्द आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे आपके घर में रहना है, आप उससे रहने दोगे? तो उसी तरह से इस संसार में गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको अपनी गवर्नमेंट में नहीं रहने देती, उनको कहाँ रहने देती है, उनके लिए अलग जगह बनाती, क्या बनाती है उनके लिए, जेल बनाती है ना। गवर्नमेंट तो अच्छी होती है, सब प्रजा जो होती है जो उसके लिए अच्छा करना चाहती है, लेकिन फिर भी जेल बनाती है क्यों? क्योंकि वो लोग जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, वो देश में रहने के लायक नहीं होते, इसलिए देश में उनके लिए एक अलग जगह बना दी जाती है ताकि वो दूर रहे, दूषित मनोबुद्धि के जो लोग होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है ताकि ज्यादा उत्पात खड़ा नहीं करे। उसी ने हमको यहाँ पर भेज दिया, हम यहाँ पर जो सब है ना सारे अपराधी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो अपराधी नहीं है, सारी बारे चाहे एथिस्ट हो, चाहे थीस्ट हो, चाहे भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, यहाँ पर है इतने अपराधी है। ये अलग बात है कि कुछ प्रयास कर रहे हैं जाने का, लेकिन हैं सब अपराधी। और यहाँ पर जिन जिनको दुख मिल रहा है ना संसार में, देखते हैं कितने दुख है, हम बोलते हैं ये बेचारा अंधा है, ये बेचारा लूला है, ये इसके हाथ नहीं, इसके पैर नहीं, भगवान कितना जुल्म करते हैं ये बच्चे, ये सब इसलिए दुखी है क्योंकि ये अपराधी है। हमको लगता है उसके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भगवान देखते नहीं है क्या इतना जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, ये कैसे पता है हमको, क्यों ऐसा लग रहा है कि दूसरों के ऊपर जुल्म हो रहा है? क्योंकि हमने पिक्चर को क्लाइमेट से बाहर देखा है, क्लाइमेट से पहले जो पिक्चर थी वो तो हमने देखी नहीं, उससे पहले क्या हो रहा था जानते हो? उससे पहले जो विलन होता था ना, विलन वो सारे अपराध करता था, बेगर ने ना जाने कितने लोगों को हत्या किया, ना जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया, ना जाने कितने लोगों को लूटा, ना जाने कितने रह के वो सब हमने नहीं देखा। और क्या इसके बाद क्या था, हीरो जो है वो विलन को पीट रहा है, विलन बड़ी उम्र का है और अभी तक हमारे सूर्य को पीट रहा है। और हम क्या बोलते हैं अगर वहां से पिक्चर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये क्या अपने दादा की उम्र के व्यक्ति को पीट रहा है, कितना क्रूर है ये व्यक्ति, उससे पहले उसने क्या किया वो नहीं देखा हमने। तो आज जो कुछ जिसको दुख मिलना है, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। ये जो सफरिंग है वो भगवान के कारण नहीं हो रही है, हमारी बेवकूफी के कारण, हमारी मूर्खता के कारण ही हमें दुख मिल रहा है। और आज भी हम वही कर रहे हैं जिसके बाद में हमें दुख मिलने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको यदि मेरे धाम में आना है तो ऐसा बनना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूँ, वरना तो क्या करना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा और चिल्लाते रहना कितना दुख है कितना दुख है कितना दुख है। और याद रखिए, यदि कोई अग्नि में गिर जाता है, कोई आग का समुद्र हो और उसके अंदर यदि गिर जाए और बोले कि ये अग्नि इतनी गर्म क्यों लग रही है, अरे अग्नि में गिरोगे तो अग्नि तो झुलसाने वाली ही होगी ना। कोई बोले नहीं नहीं अग्नि को तो ठंडा होना चाहिए, ये भगवान कितना क्रूर है, अग्नि को कितना कष्ट में बनाया है। अरे बाबा अग्नि के अंदर आए हो तो कष्ट लगेगा, अगर तुम्हें इस संसार में सुख ढूंढना है तो संसार में सुख मैंने रखा ही नहीं है, इस संसार से बाहर निकलो, अग्नि से बाहर निकलो। कोई बोले कि भाई समुद्र के अंदर चला जाए और बोले समुद्र का पानी कितना ठंडा है, कि भगवान क्या इतना ठंडा पानी बना है, क्यों इसमें पानी ठंडा इसलिए बनाया कि उसके अंदर जाओ नहा के शुद्ध हो जाओ और बाहर निकलो, वहां पर रहने के लिए थोड़ी ना पानी बनाया है। तो उसी तरह से संसार में हमें भेजा गया है कि हमने जो अपराध किए हैं उनके लिए प्रश्चित करें और आगे से भगवान के धाम में जाने के लिए जो काम है वो काम करें। भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजन स्वमान, इससे इस संसार में तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर सेल्फीज निकाल के पोस्ट करो, इसलिए संसार में भेजा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए डिशेज बनाकर रोजाना खाओ और अपने शरीर को मोटा बना दो। इस संसार में तुम्हें इसलिए भेजा है कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी करो, काम हंसना है जो भी इच्छा नहीं बोलोगे भगवान ने, ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। भगवान ने कहा एवं प्राप्य भजन स्वमान, इसलिए भेजा है कि तुम यहाँ पर आयो अपना काम करो मेरा भजन करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। तो भगवान ने कहा यदि तुम ऐसा करोगे अपना मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पण कर दोगे और मेरे लिए ही केवल तुम्हारा जीना होगा तो मैं तुम्हें अपने धाम में लेके अब ऊर्ध्वम न संशय तुम शक मत करो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने धाम में। और फिर भगवान ने कहा कि ये संसार में लोग तो ऐसे हैं नहीं जो अपना सब तन मन बुद्धि मन वचन कर्म से केवल मेरे बारे में ही सोचेंगे, अपने हृदय में केवल मुझे बिठाएंगे। तो यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भी भगवान कभी शुरू नहीं करते, भगवान कहते हैं अथ चिंतम समादातुम न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छां तुम धनंजय, अगर तुम पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में एकाग्र नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अभ्यास तो करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो करो। हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, अभी तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही मन में नहीं हो रही है। भगवान कहते अगर आप मन नहीं लगा सकते बुद्धि नहीं लगा सकते तो कम से कम अभ्यास करो। क्या अभ्यास है, एक गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी है। सबसे पहला जो मनुष्य का जो कर्तव्य है वो क्या है, एक शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय स्वीकार करना है। और ऐसा बोलते हैं उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, निगुरा है जो, जिसने गुरु स्वीकार नहीं किया ना उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। अगर देख लो तो गंगा जी में स्नान करो, क्योंकि निगुरा जो है वो खुद ना कभी बीमार होगा और ना ही कभी वो जो उसके दर्शन करेगा वो भी रह जाएगा। तो सबसे बड़ा अभ्यास क्या, हमारे अंदर सीरियसनेस है, हमने सोचा ही नहीं है कि हम दीक्षा लेंगे, है ना, खाली सुनना ही काफी है बस, हमारे मन में आता ही नहीं है कि हम भी दीक्षा लेंगे, हम सोलह वाला जप करेंगे, हम भी ये ना कांदा लहसुन अन्य छोड़ेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे, ये तो हरे कृष्ण वाले पागल है ना, वो ये कर रहे हैं, ऐसा मन में भी नहीं आता। आजकल देखते बच्चे होते हैं टीन एजर्स बच्चे, उन लोगों को अक्कल आ जाती है, वो दीक्षा ले लेते, और बड़े बड़े बेटे होते उनको नहीं मरना, उनको नहीं जनमरण के चक्कर से छूटना, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है बात। भगवान ने कहा भले तुम्हारा मन नहीं लगता मुझमें, भले बुद्धि नहीं लगती, कम अज कम इच्छा तो करो मेरे पास आने की, तुम्हारी इच्छा जो है वो भी मुझे विवश करने की, तुम्हें अपनी ओर लाने के लिए योग्य बनाने की। भगवान ने कह दिया मैं योग क्षेम बनाऊंगा, तुम्हारे पास जिस चीज की कमी है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा मैं करूंगा, केवल अनन्य स्थिति रखते हुआ कम अज कम तुम मुझे अपना समझो तो सही, तब समझा हमने की कृष्ण हमारा है, हम संसार को ही कहीं हमारा मानते हैं। तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो, क्या अभ्यास है, आज याद रखो मन नहीं लगता भगवान में, बुद्धि नहीं लगती, तो भी अभ्यास करना है, और अभ्यास शुरू होता है गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त करने से, एक शुद्ध वैष्णव गुरु को स्वीकार करना और उनके द्वारा लिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, सोलह माला जप करना, मंगला संध्या आरती करना, भगवान को अर्पण के बगैर कुछ न खाना, एकादशी का उपवास रखना, ये अभ्यास है, ये भक्ति का पूर्ण रूपेण दर्शन नहीं है, ये हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद धीरे 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 हृदय से सारे अपवित्रता समाप्त होगी, केवल अभ्यास करने से स्वीकृति नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगे भगवान ये भी बताएंगे कि मैं किससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेमियों को ही अपने घर में लेके जाया जाता है। तो भगवान अभी तो कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारा मन नहीं लगता तो अभ्यास करो, तो कोई बोल देगा कि भाई अभ्यास भी समझते है ना, अगर अभ्यास भी नहीं होता तो क्या करूं, तो भगवान बताते हैं अभ्यासे के सार्थो सी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि अगर तुमसे अभ्यास भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, तुम अपने कर्मों को मेरे लिए कुछ तो करो, कुछ जो तुम्हारे अंदर करने की शक्ति है, कुछ अभी ऐसा करो कि तुम मार्केट से कुछ लेके आते हो ये सोच के आओ कि मैं भगवान के लिए लेके आ रहा हूँ, तुम ये सोच के कुछ बनाओ परेशान कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, जो तुम्हारे अंदर स्किल है, जैसे अगर किसी को स्टिचिंग आती है तो कुछ भगवान के लिए कभी ड्रेस बना दियो, कुछ अगर हम आपके अंदर जो भी क्वालिटी है आपको अच्छा बनाना आता है, आपको अच्छा गाना आता है, तो कभी बैठ के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कभी बैठ के भगवान के सामने आधा घंटा पंद्रह मिनट बैठ के कृष्ण को कोई अच्छा सा संकेत को सुनाया जाए, हाँ प्रभु तो उससे भी खुश हो जाते हैं कि तुम कुछ तो मेरे लिए करो कभी तो समय, क्योंकि ये बात तो याद रहती है कि बारहवा अध्याय पढ़ रहे हैं और भगवान बता देते हैं कि जब तक आप मेरी भक्ति नहीं करोगे आपका कल्याण नहीं हो सकता, इसकी दूसरी बातें बताने की नहीं है, केवल भगवत भक्ति को किस तरह से उसको प्राप्त किया जाए उसी के लिए भगवान बता रहे हैं कि तुम कुछ तो मेरे लिए करो, क्या पूरा दिन बस अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते रहोगे, क्या पूरा दिन बस क्या खाऊं क्या सोऊं कैसे रहूं कैसे जीऊं कैसे खुश रहूं यही सोचते रहोगे, पूरे दिन में कितना टाइम तुम मेरे लिए निकालते हो, कितना टाइम तुम ऐसा लगता है ये मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ, कुछ तो करो, फिर अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते ये कृष्ण जो है ना उसको कहा जाता है करुणा का सागर। उनकी करुणा की जो कोई लिमिट नहीं है, कैसे हो तुम? भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम मनुष्य से पशु भी बन जाओगे तो भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं बहिष्कृत करूंगा। भगवान ने हमारी अंश जीवन हो गए, माता पिता भी बहिष्कृत कर देते यदि हम अपराधी हो जाते हैं, है ना? होते ऐसे कि बच्चा मेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं है। भगवान ने कहा कि मामाइव अंश जीव लोके, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो हरे कृष्ण जप करते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कह दिया कुत्ता हो, सुअर हो, गटर का कीड़ा हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो, जो भी बन जाओगे ना, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ मामाइव अंश। मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुमने क्यों ऐसा किया। मैं हर समय तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम तो आओ कभी एक कदम चलकर मेरे पास। भगवान अपने हमारे प्रयास को देखते हैं, कितना प्रयास है वो नहीं देखते। गीले यदि एक एक रेत का कण भी उठाकर सेतु बनने लेकर लगाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी श्री राम तो उसे अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। वो जो शबरी है झूठे बेर खिलाती क्या भूखे है भगवान? प्रेम तो स्वीकार करते ना हो। और ये बात बता दो मैं आपको कि भगवान को प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कुछ कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसकी मांग की हो भगवान ने। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते मेरे लिए कोई कार्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आगे कहते हैं अथेतरप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं कुरु ततः कुरु यतात्मनः। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो मेरे लिए कार्य करते उनकी कभी सहायता कर लिया करो। आप तो कमाते रहते हो ना, पूरा जीवन बस तुम्हारा कमाने में ही गुजर जाता है, एंजॉय करने में। आप क्या सारा दिन देखते हैं कितना टाइम हमारा एंजॉय करने में वेस्ट होता है, कितनी देर में हम मोबाइल पे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भी पर टाइम गुजारते हैं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है तुम नहीं कर सकते तो तुम ऐसा कर सकते हो कि जो मेरी भक्ति कर रहे हैं उनकी सहायता करो, जो कोई संकीर्तन प्रोग्राम कर रहे हैं उनको कुछ ना डोनेशन दे दो कि भाई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ दान दे दो, कुछ अपनी फिजिकली उनकी कुछ हेल्प कर दो। तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कुछ कर दो किसी तरह से। देखो हम हर समय जो है वो दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं, है ना? जैसे अगर एक भक्त जो है वो एक चपाती बनाकर भगवान को भोग लगाता है ना, तो वो चपाती तो लगता है कि उस भक्त ने बनाई, लेकिन उस आटे को घर तक पहुंचने के लिए कितने सारे लोगों का सहयोग होता है ना? एक किसान होता है, वो खेती करता है, उससे अनाज उगता है, उसके बाद अनाज को खेतों से काटा जाता है, बोरियों में भर उसको फिर मील्स में जो है वो पीसा जाता है, बोरियों में भरा जाता है। तो किसी भी स्टेज पर तुम हो, लेकिन तुम ये तो सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, निष्काम सेवा करो कुछ, कि ये सोच अपने अंदर लाओ कि इससे मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, मेरा काम है लेकिन उसे भगवान के लिए करूंगा। तो भगवान बोलते किसी न किसी तरह से तुम ये सोचो अपने मन में अपनी बुद्धि में कि मेरे साथ कोई संबंध जुड़ जाए तुम्हारा, संबंध जोड़ो। लेकिन ये कोई पराकाष्ठा नहीं है। आगे श्लोक नंबर 12 में भगवान एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, बहुत ही सुंदर है। पता नहीं मैं जितना बोल रही हूँ समझ में कितना आ रहा है, लेकिन ये कि मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है तो मेरी इच्छा यही है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासम, ज्ञानम ध्यान विशेष्यते, ध्यानात्कर्म फलत्यागम, त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। मैंने तुम्हें सारे रास्ते तो बता दिए, लेकिन ये एक सीढ़ी है और वो कैसे है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। कुछ लोग तो भगवान के लिए कुछ नहीं करते, खाली ऐसे एक काम करते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, है ना। काम कर रहे होते हैं, कर्म कांड होता है। सबसे पहले कर्म कांड होता है, एक तो विकर्म होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक विकर्म होता है जो कि शास्त्रों में लिखा होता है नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। वो क्या होता है, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, है ना। सब शास्त्रों में मना किया गया, लेकिन किसी को भगवान की क्या परवाह, किसी को शास्त्र की क्या परवाह, वो फिर भी अनाज खाते हैं, है ना। और भगवान ने साफ साफ बोल दिया, ये शास्त्र विधि काम सिद्धि अवापनौती न सुखम न पराम्बति। उसे न सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा न पर। वो सोचता है कि भाई एकादशी के दिन अनाज नहीं खाए, क्यों नहीं खाए, मुझे तो अनाज पसंद लगता है, मैं तो एकादशी के दिन भी खाऊंगा। वो सोचता है खाके सुखी होगा, लेकिन भगवान ने पहले से डिक्लेयर कर दिया ना तुम्हें सुख मिलेगा ना सिद्धि मिलेगी और ना ही कभी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करोगे अगर तुम ये बात नहीं मानोगे। तो शास्त्र में लिखा होगा भाई नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, है ना। साफ लिखा है मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं भाई मांसाहार करने से मैं आनंदित होता हूँ तो मैं मांसाहार करूंगा। ये उसकी सोच है कि मैं आनंदित होगा, भगवान ने तो कहा सुख नहीं मिलेगा। तो मेरी बात नहीं मानोगे, सुख नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, परम गति नहीं मिलेगी। शास्त्र में लिखा हुआ है शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है गलत कार्य नहीं करने चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है अपराध नहीं करने चाहिए, और फिर भी जो लोग करते हैं वो सोचते तो यही है ना कि ये करके मैं खुश हो जाऊंगा, तभी तो करते हैं। अगर उनको पता है कि ये करके मुझे दुख मिलेगा तो कोई करेगा क्या, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि मैं करने के बाद दुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो पहला होता है विकर्म। विकर्म जो करते हैं वो तो ना जाने कभी भगवान ने घेर दिया कि ये कितना कृष्ण कृपालु है, फिर भी बोल देते हैं अशुद्ध नाना महापुरुषा धर्म से परम तपा अब प्राप्ति मामले वर्तनते मृत्यु संसार वर्तमान। जिसको मेरे शब्दों पर जिसको मुझ पर श्रद्धा नहीं है ना, वो अप्राप्य मांग निवर्तन है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे और बार बार इस संसार मृत्यु संसार में झुलसते रहेंगे। तो विकर्म करने वाले तो अलग करिए, उसके बाद आते कर्म कांड करने वाले। कर्म कांड का क्या मतलब है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कर्म कांड करते होंगे, और कर्म कांड का क्या मतलब होता है कि मैं यदि ये काम करूंगा तो उसके बदले में मुझे ये मिलेगा, है ना। अगर मैं सोमवार को रोटी चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं सगड़ा पिलाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं रिश्वत के दिन घुगड़े चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। सबके मन में ये होता है ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये होता है कर्म कांड। लेकिन कर्म कांड से क्या होता है, आपको संसार में कुछ मिल सकता है, लेकिन ये कर्म कांड देवताओं की पूजा से सीमित होता है और वो आपको स्वर्ग से ज्यादा ऊपर कभी नहीं लेके जा सकता। कोई देवता ऐसा नहीं है जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सके। तो ये भगवत गीता पढ़ने के बाद इतना बुद्धिमान तो होना ही है कि भगवान ने कह दिया क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों में शांति, कि जब आप स्वर्ग में जाओगे वापस से आकर यहाँ पर हो सकता है कुत्ता बिल्ली गटर का कीड़ा बनना पड़े, तो बार बार ये जो साइकिल है ना उसको घूमने से आगे बढ़ो, थोड़े से बुद्धिमान बनो। नदेशु रमते बुधा, बुद्धिमान ऐसे कार्यों में रमते नहीं है, आनंद नहीं लेते हैं, वो क्या चाहते हैं वो आगे की सोचते हैं। तो जो कर्म कांड है उसके द्वारा हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, स्वर्ग तक। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो उसके बाद क्या होता है, कर्म कांड के बाद आता है कर्मयोग, यानी भगवान के साथ कर्म, भगवान के लिए कर्म करना। कर्मयोग में क्या होता है कि हम भगवान के लिए निष्काम सेवा करते हैं, मतलब हम भगवान को जानते नहीं है लेकिन यही सोचते हैं बस ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, ये भगवान कौन है भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह में खुदवाते हैं, वो रास्ते में मिनरल वाटर बेचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, किसी को दवाइयाँ देते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो निष्काम सेवा करते हैं। और फिर उनको क्या लगता है, उसकी बदली में मुझे भगवान मेरे पर कृपा करेंगे, वो भगवान जो भी है लेकिन उसकी बदली में मेरे ऊपर कृपा होगा। लेकिन कर्म कांड के बाद क्या होता है, जैसे आप अगर किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है लेकिन आप उसको जानते नहीं हो कि बॉस कौन है, तो हम हमेशा जो आपको सारी फैसिलिटीज दे रहा है, जो आपको सैलरी दे रहा है, तो धीरे धीरे आप काम करते करते आपके मन में ऐसा तो होगा ना कि मैं उस बॉस को जानू तो सही, आपसे है कौन, वो कौन है जो मुझे सैलरी देता है, जो मुझे फैसिलिटीज देता है। तो कर्म योग के बाद आता है ज्ञान योग, यानी कि वो जिसके लिए आप कर्म कर रहे हो उसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है कि आखिर वो है कौन, तो ये आता है ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान योग के बाद क्या होता है कि हाँ मुझे पता तो चल गया कि मेरा बॉस ये है, लेकिन वो दिखता कैसा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसा है। तो जैसे भगवान के बारे में ज्ञान या पता चल जाता है कि वो भगवान है जो सारे संसार का पालन करता है, सृजन करता है, समाप्त करता है, उसके बाद ध्यान लगाते हैं, पश्यन्ति है जो ध्यानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हृदय में भगवान को देखते हैं कि ये वही है भगवान जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, सृजन। और उसके बाद ध्यान लगाने के बाद क्या होता है पता है, फिर ध्यान योग के बाद एक अवस्था आती है जिसमें हम सोचते हैं कि ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ये सबको सबका समग्र है जो मेरा कल्याण करता है, पूरे संसार का कल्याण करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसके साथ संबंध जोड़ूं? जब आपको पता चल गया कि वो कौन है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, वो है कौन, उसके साथ क्या कोई ऐसा भी संभव है कि मैं कभी उसके साथ हाथ मिलाऊं, कभी मैं उसको अपने घर पे दावत पे बुलाऊं, कभी मैं उसके साथ बैठ के कुछ बातें करूं, तो ये क्या है, ये भक्ति योग है। भक्ति योग में आप भगवान को अपना बना लेते हो, फिर भगवान के साथ धाम देखते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को जैसा दिल करे वैसा खिलाते हैं, जब दिल करे जलाते हैं, जब दिल करे तब सुलाते हैं, कभी चंदन यात्रा करते हैं तो कभी पुष्प अभिषेक करते हैं, कभी झूलन यात्रा। तो भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध जुड़ता है वो किसमें होता है, भक्ति योग में, जो की इस आध्यात्मिक जगत की सीढ़ी का हाइएस्ट स्टेप है। लेकिन ये भक्ति योग में ही खाली भगवान के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है, तो ये आखिरी फ्लोर है, समझो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका आखिरी फ्लोर जो है वो भक्ति योग है। लेकिन अगर किसी को भक्ति योग में श्रद्धा नहीं है तो वो कहीं पर, जैसे भगवान ने कहा अगर तुम मन नहीं लगा सकते तो क्या करो, अभ्यास करो, अभ्यास नहीं लग सकते तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो जो मेरे लिए कर्म कर रहे हैं उनकी सहायता करो, तो ऐसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आखिर मेरी भक्ति तक पहुंच जाओगे। लेकिन अक्लमंद क्या है पता है, जो अगर कोई चोट ना कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जिसके 20 फ्लोर्स हो, वहाँ पर जाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो आप स्टेयर से जाते हो और दूसरा लिफ्ट के साथ जाते हो। तो बुद्धिमान कौन है जो लिफ्ट से जाता है, तो भक्त भले उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं हो, एक शुद्ध गुरु महाराज को स्वीकार करके यदि उसके पदचिन्हों का अनुसरण करेगा तो वो शुद्ध, क्योंकि वो गुरु महाराज आध्यात्मिक जगत तक पहुँचे हुए, तो वो आपको डायरेक्ट से वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि किसी शुद्ध वैष्णव गुरु महाराज को स्वीकार किया जाए और फिर उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके हम चाहे कौन से भी फ्लोर पे खड़े हमको वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठा पहुँचा देंगे। तो यहाँ तक बताने के बाद भगवान ने अब श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक उन लोगों के बारे में बताया है जो भगवान को प्यारे लगते हैं। जब आप भक्ति योग में आते हो ना, तो सबसे पहला ये कि हम भगवान से प्यार करें, है ना। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम यहाँ पर आए हुए, सब लोग के पास अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब लोगों के लिए इतने सारे काम होते हैं, फिर वो सारे काम को, सारी ड्यूटीज को साइड में रखकर जब भगवान के लिए समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, तो इस बात को साबित करती है ना कि हम सब भगवान से प्यार करते हैं, तभी तो आते हैं। प्यार करते तभी तो उसके लिए सुनते हैं, प्यार करते तभी तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो हमने प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार तभी सफल होता है जब पेमेंट ही प्रेम है ना। एक हाथ से एक वन साइड लव कभी सक्सेस नहीं होता ना। तो भगवान हमसे प्यार करे उसके लिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए वो कौन बताएगा? भगवान बताएगा ना। कि अब देखो, कोई अगर कोई साधारण सी अगर कोई कन्या होती है, वो अगर किसी राजा के बेटे से प्रेम करना शुरू कर देती है, तो फिर वो क्या सोचेगी कि इस राजा के बेटे को जो जो चीजें पसंद लगती है, वो सारी क्वालिटीज मैं अपने अंदर डेवलप करूं, ताकि मैं उसे, वो मुझे प्रेम करना शुरू करे। वो करेगी ना उसे। इस संसार में अगर किसी के साथ किसी की सगाई हो जाती है, तो फिर वो लड़की क्या कन्या क्या करने लगती है, वो उसी तरह से अपना जीवन गुजारना शुरू करती है जैसा कि उस जिसके साथ उसकी इंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, उसके साथ उसको, उसके घर वालों को जैसा अच्छा लगता है, उसको जैसा अच्छा लगता है, वैसा बनना शुरू कर देती है। वो वही व्यंजन बनाना सीखती है जो कि उसके ससुराल में चलते हैं। यहाँ तक कि वो ड्रेसेस भी वैसे ही बनाती है जैसे कि वहाँ पर चलते हैं। वो अपने अपने रहन सहन से इस तरह से फील कराती है, ऐसा बनने की कोशिश करती है ताकि उसके वो लोग उसे पसंद करने लगे। तो अगर हम भी भगवान से प्रेम करते हैं और तो हमारी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए कि भगवान भी हमसे प्रेम करे। तो भगवान बताते हैं कि मैं किससे प्रेम करता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है ना, तो हम तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर, केवल भक्त कहलाना काफी नहीं है, भक्त के अंदर जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर डेवलप करनी भी है। और सबसे पहली जो क्वालिटी है, मतलब पहला सबके ही काम जरूरी कि ये तो होगा नहीं सबसे। और भगवान क्या कहते हैं, अज्वेष्टा सर्वभूषाणां मैत्रा करुणा एव च। अज्वेष्टा मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से हसद नहीं करता, जो किसी को, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं उससे प्यार करता हूँ, भगवान कहते हैं, जो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता, किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है। आज हम अपने आप में जरा जान के देखें, तो पहले क्या होता था, द्वेष किसमें होता था, देवताओं और राक्षसों में। हमेशा लड़ाई हम सुनते ना, देवता और राक्षसों की लड़ाई होती थी, है ना। उसके बाद क्या हो, देवताओं और राक्षसों के प्लैनेट्स ही अलग होते थे, वो अलग अलग प्लैनेट्स में द्वेष होता था। उसके बाद आगे आगे अलग अलग कंट्रीज में, है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से द्वेष करता है। उसके बाद आ गया अलग अलग, एक ही कंट्री के अलग अलग सिटीज में द्वेष होने लगा। और उसके बाद आ गया तो एक ही सिटी के अलग अलग जो विलेजेस है, गाँव में, उसके अंदर द्वेष होना शुरू होगा। उसके बाद आ गया है तो एक ही बिल्डिंग के अड़ोस पड़ोस में द्वेष होता था, ना देखा ना, द्वेष होता था। वो मेरे पड़ोसी को, वो तो कहानी भी सुनी होगी, शिव जी से बोला कि भाई जो मुझे मिलेगा मेरे पड़ोसी को दो मिलेगा, तो उसने बोला मेरी एक आँख को फोड़ दो, ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आँख फोड़ दो। तो फिर क्या होता था, साइड वाले के साथ द्वेष होता था। अब पता है क्या होता, एक ही घर में बैठे होते हैं और एक ही घर में एक दूसरे के साथ द्वेष, क्या जीवन अभी हमने अपना कितना नरकमय बना दिया है कि हृदय के अंदर द्वेष इतना है कि जो माता पिता बच्चों को पैदा करते वही बच्चे और माता पिता के अंदर द्वेष होता है। दूसरों से क्या द्वेष करेंगे, अभी बोलते थे भाई हिंदू मुसलमान मुसलमान का झगड़ा होता है, लेकिन आज तो क्या होता है हिंदू हिंदू का झगड़ा, उनके अपने ही धर्म के लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसकी पूजा करते हो तुम उसकी पूजा करते हो तो इसमें झगड़ा शुरू हो जाता है, तो तुमने इसके मंदिर में तुम जाते हो तो उसके साथ उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, और आगे आगे देखे तो एक ही पंथ के बोले कि भाई ये हरे कृष्ण वाले तो ये हरे कृष्ण वाले आपस में लड़े, तो इतना द्वेष है, हम सोच के मतलब दुख होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। अद्वेषा केवल अपनों के साथ नहीं बोला भगवान ने, अगर मैं हरे कृष्ण वाली हूँ और हरे कृष्ण के साथ द्वेष नहीं करती हूँ तो ये तो कोई बात ही नहीं। अद्वेषा सर्वभूताना, जो दूसरे किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता, किसी के लिए भी उसके मन में कोई कभी ऐसा भाव आता ही नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, जो भी है जैसा भी है उसका ठेका क्या हमने लिया है, उसकी मर्जी है वो क्या करना चाहता है, वो उसकी मर्जी है वो कैसे जीना चाहता है, हमें क्या जरूरत है दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करने की। लेकिन हमेशा दो लोग बैठेंगे तो तीसरे लोग की बुराई करना जैसे हमारे ऊपर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि तीसरे लोग के बारे में बोलना है ना, हम नहीं बोलेंगे तो सफल नहीं होगा आपस में मिलना, ये मीटिंग कामयाब नहीं जाएगी। तो यहाँ साफ साफ बताया अद्वेषा सर्वभूताना, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ हम ईर्ष्या करें, और मित्र सबका मित्र होना चाहिए। मित्र का मतलब क्या है, मित्र का मतलब होता है वेलविशर, वो हर किसी के लिए अच्छी भावना रखे, हर किसी के लिए सोचे कि उसका कल्याण हो, केवल उनके लिए नहीं जो आपके साथ अच्छा करते हैं, उनके लिए भी जो आपके साथ बुरा करते हैं, उनके साथ भी मित्रता और करुणा करें। करुणा का मतलब क्या होता है, हमारी मेंटेलिटी इतनी लो क्वालिटी की है ना कि हमको सही से वर्ड भी समझ में नहीं आते। करुणा का मतलब हमें क्या लगता है, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी बीमार को दवाई खिला दी, किसी का विवाह कर दिया, किसी के स्कूल की फीस दे दी, ये करुणा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी की करुणा है, क्योंकि भगवान ने तो ये अक्षर में बोला था कि चलो ठीक है कभी कुछ अच्छा कर दो, लेकिन वास्तविक करुणा क्या है पता है, एक सिंपल सा उदाहरण है कि एक गांव है वहां पर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, और तूफान में सारे लोग बह रहे थे, सारे लोग जो है वो तूफान में डूब रहे थे, पानी इतना आ गया था कि डूब रहे थे। दो दोस्त थे, वो बहुत अच्छे स्विमर थे, उन्होंने सोचा सब लोग डूब रहे हैं चलो बचाते हैं, दोनों ने बोला ठीक है बचाते हैं, दोनों कूद पड़े समुद्र में और बचाना शुरू किया। एक दोस्त जो था, क्योंकि तूफान इतना गहरा था कि जिसको भी पकड़ते थे तो पानी उसको और भी उधर खींच के चला जाता था, फिर दूसरे को पकड़ते थे पानी खींच के, तो एक दोस्त ने बहुत मेहनत की कम करने जाकर एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे किनारे पर ले आया, और दूसरा जो दोस्त था वो पता ही क्या कर रहा था, उसने पहले एक को पकड़ा, वो व्यक्ति चला गया, उसका कोट हाथ में आ गया, उसको किनारे पर लेके गया, फिर दूसरा व्यक्ति जा रहा था उसको भी पकड़ा, उसका भी ड्रेस हाथ में आ गया, उसको पकड़ा, ऐसे करते 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 400 ड्रेसेस उसने पकड़ लिए, और उसने 400 ड्रेसेस जो है वो किनारे पर लगा दिए, और दूसरे ने क्या किया, सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा, किसने बड़ा काम किया, जिस एक ने एक व्यक्ति को बचाया। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए वस्त्र नए शरीर धारण करती है, तो ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, कितना बचाओ उसको। आखिर तो जिस तरह से जब ये वस्त्र बना था उसकी किस्मत में था कि एक दिन उसको फटना है, उसी तरह से ये शरीर आप रक्षा करते हो एक न एक दिन उसको विनाश होना है। अगर बचाना है तो उस आत्मा को बचा लीजिए जिस आत्मा का बार बार विनाश हो रहा है। वो आत्मा जिसके लिए भगवान ने कह दिया कि ये अजन्मा है, कभी विनाश नहीं होता, उस आत्मा के साथ हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं कभी सोचा है हमने? वो आत्मा है और उसको भगवान के धाम में होना चाहिए। और बड़ी से बड़ी बीमारी अगर किसी को हो जाती है, हम सोचते हैं बेचारा बीमार हो गया, चलो उसको हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं, उसको अच्छे हॉस्पिटल में उसको दिखा देते हैं। कितने एक बड़े से बड़े बीमारी एक व्यक्ति को कितनी बार मारेगी? बड़े से बड़ा उसको कैंसर हो जाए, उसको एड्स हो जाए, एक बीमारी उसको कितनी बार मारेगी? एक बार मारेगी ना, एक ही बार मारेगी। लेकिन यदि उसकी अज्ञानता दूर नहीं हुई, यदि उसने भगवान के साथ प्यार नहीं हुआ, यदि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, यदि उसने अपना ये जन्म भी भगवान की सेवा किए बगैर छोड़ दिया और इसी तरह से मर गया, तो वो एक बार नहीं बार बार मरता रहेगा। तब तक नहीं मरता रहेगा जब तक कि उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो एक मिलीमीटर भी यदि किसी के अंदर कृष्ण का प्रेम होता है और वो भगवान के नाम का प्रचार करता है, तो वो हजारों टन जो हम मानव समाज की सेवा करते हैं उससे ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वो एक बार यदि किसी के मुख से निकल आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक महामंत्र उसके समस्त पापों को विनष्ट कर देता है। तो कितना बड़ा उनका एक जी अमेरिका में गए और वो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे, वहाँ पर बड़े बड़े फीस होते थे। तो कोई आगे कहता था स्वामी जी आप आए हो, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े फीस चलते हैं, ये यहाँ पर कितनी सारी बेवाएं हैं और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे जो माता जी होती उनको छोड़ दिया जाता है, विवाह बूढ़ी हो जाती है, किसी के साथ ऑनेस्ट होते नहीं तो विधवा की जिंदगी गुजारती है, कोई उनको स्वीकार नहीं। तो इनके इनके विषय में कभी सोचा आपने? आप इनके कल्याण के लिए भी कुछ कीजिए। बोलते खाली यही कुछ है क्या? हम तो पूरे विश्व के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। ये दुखी है इसका कारण इनके अपने कर्म है और इनके कर्म कब टूटेंगे, इनके कर्म कब समाप्त होंगे? जब ये भगवान की भक्ति करेगी। इसीलिए हम भगवान की भक्ति करवाना सिखाते हैं, इसीलिए हम भगवान की अर्पण किए हुए प्रसाद को खिलाते हैं, इसीलिए तो हम नगर कीर्तन करते हैं, इसीलिए तो हम हर जगह पर जाकर यही निवेदन करते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि जीव का कल्याण इसके अतिरिक्त और किसी से हो ही नहीं सकता। तो ये है करुणा। भगवान कहते हैं सबके ऊपर करुणा, और करुणा यदि कोई किसी के ऊपर करता है तो केवल एक भक्ति ही भगवान भगवान का भक्त ही दूसरों के ऊपर करुणा कर सकता है। क्योंकि जीव का कल्याण तभी होगा जब वो भगवान के साथ जुड़ेगा। दुख किस बात का है जानते हो? इस संसार में एक ही दुख है जीव को, जीव आत्मा का एक ही दुख है कि उसको भगवान से दूर कर दिया गया है बस। और ये सारे दुख का कारण यही है कि हम भगवान से दूर हैं। और भक्त क्या काम करता है? वो भक्त भगवान से मिलाने का काम करता है। और भगवान आगे कहते हैं एक तो उसके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, दूसरा वो सबका मित्र होना चाहिए और दूसरों के ऊपर करुणा करे। निर्ममो, किसी भी चीज के अंदर उसकी ममता नहीं होनी चाहिए। निर्ममो मतलब हम समझते हैं कि ये मेरा है, वो किसी के समझते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते है ना। अगर हम कुछ होंगे तो हमारा कुछ होगा ना। भगवान ने तो कह दिया जी मेरे स्वरूप है कृष्ण ना नित्य दास, दास का कुछ नहीं होता, सब कुछ किसका होता है? उसके स्वामी का होता है ना। हम कितना कितना अपना अपना करते हैं, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये संबंधी मेरे, ये मेरे 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 नहीं है। वास्तव में ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे, ये पहले से लेकर आता आया है, शुरू से लेकर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना हमारी वो खत्म ही नहीं हो रही है। अपने आप को शरीर समझते और शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को अपना मानते हैं, इसीलिए दुखी है। अगर हम एक बार अपने आप को भगवान का दास समझ जाए तो फिर हम हम किसी भी वस्तु को अपना समझेंगे नहीं, और अपना नहीं समझेंगे तो उनके होने का कभी दुख भी नहीं होगा। क्या सोचेंगे कि ये सब वस्तुएं किसकी है? भगवान की है। थोड़े समय के लिए उसने मुझे ये दी है संभालने के लिए, और फिर जो भी मेरे पास है वो सब एक एक करके ले भी ले रहा है ना। हर वस्तु, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी हम हमारा नहीं कह सकते, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो भी हमसे बिछड़ जाएगा। तो किसी भी वस्तु में, दूसरी वस्तुओं की दूर की बात है, कभी अपने आप पे भी ये नहीं सोचना चाहिए ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी। आज मैं अपनी इच्छा से ये सोच रही हूँ ना कि हाथ ऊपर कर रही हूँ, वो मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। वो तो अंदर में कोई परमात्मा बैठा हुआ है जो शक्ति दे रहा है। अगर शक्ति देना बंद हो जाए तो बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो पैरालाइज होकर घर में पड़े हुए थे। तो ये सब शक्ति भगवान की है, और हम उस शक्ति के द्वारा अर्जित। भगवान ने क्या कहा कि ये जो शरीर तुम्हारा जिन तत्वों से बना हुआ है वो तत्व मैंने दिए हैं, वो मेरा पुनरो वायु मनो बुद्धि ये सब मैंने दिया है। तुमने अपनी बुद्धि से जो कुछ कमाया है वो बुद्धि मेरी है। तो तुमको जो कुछ भी आज तक प्राप्त हुआ है वो सब में, जिस हवा में सांस देते हो वो सांस मैंने दी है, वो हवा मैंने दी है तुमको। जिस सूर्य प्रकाश से जीते हो वो सूर्य प्रकाश मैंने दिया। क्या है हमारा जिसके ऊपर क्या लेके आए थे, जिसके लिए हम बोल सकते कि ये हमारा। भगवान ने कहा किसी वस्तु पे ममता नहीं रखो, मेरा अहंकार है। अहंकार सिर्फ एक ही होना चाहिए बस। अहंकार हम समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसपे अहंकार होता है ना। लेकिन अहंकार सिर्फ ये तो मिथ्या अहंकार है, और वास्तविक अहंकार क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरा है। ये अहंकार आना चाहिए मन में। हमको दुनिया अच्छी अपनी लगती है और भगवान के लिए नहीं सोचते ना कि भगवान मेरा। वास्तविक अहंकार वो है जब मन से निकले कृष्ण है ना मेरा, वो कृष्ण मेरा है। जिस दिन आ गया सब लोग जीत गया जीवन की बाजी को। तो आगे भगवान कहते हैं सब दुख सुखम, जो दुख और सुख को समान समझता है। ये बहुत ही हाईएस्ट बात है। यहाँ पे भगवान दुख और सुख की बात कर रहे हैं, बार बार करेंगे। हमको दुख, हम कितना दुखी होते हैं, थोड़ा सा दुख हो जाए, थोड़ी सी थोड़ा सा दुख, गर्मी बढ़ जाती है तो दुखी हो जाते हैं, है ना। कभी लाइट चली जाती है तो दुखी हो जाते हैं, ऐसी खराब हो जाते हैं तो दुखी हो जाते। ये तो बहुत ही छोटे छोटे दुख है, लेकिन संसार में बड़े बड़े दुख भी यदि आ जाए तो भी भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्तु बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायनो अनित्याह तं स्थितिक्षस्व भारत। हम तो भगवान को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि बस मेरी ये तकलीफ दूर होनी चाहिए, भले भगवान को छोड़कर, भले मुझे किसी गधे की कब्र पर क्यों न सजदा करना पड़े। तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मेरा ये दुख दूर होना चाहिए। उसके लिए भगवान बदलने पर भी शर्म नहीं आती हमको। इसलिए भगवान कहते दुख और सुख, ये भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि अगर हमको दुख आएगा तो तुम ऐसा करना, कोई पानी पी लेना, कोई पर्ची पाल देना, कोई तावीज पहन देना, तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान खड़े हैं सामने और अर्जुन को कहते हैं तम भारत, तुम्हारे कर्मों के दुख है तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तुम्हारे कर्मों के दुख अगर तुम्हें मिलने ही है तो तुम क्या करो, भारत, और क्या करो, मुझ पर विश्वास रखो। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है ना, तो वो ये जानता है कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, है ना। श्रद्धा के बाद पहले ही आ गए कि आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है आप यही सोचो कि इसमें भी भगवान की कृपा है। आज जो मुझे दुख मिल रहे हैं, मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूँ, इतना बड़ा पतित हूँ कि इससे करोड़ों गुना अधिक अपराध मुझे मिलने चाहिए। ये तो मेरे कृष्ण की कृपा है कि वो सूली से कांटा कर सकता है। इतने थोड़ी क्वांटिटी में मुझे आपको दुख दिए हैं, लेकिन मैं तो जाहिर सी बात है जेल में रह रहा है कि किस सुख की वो कामना कर सकता है। ये तो संसार ही जेल है, तो जेल में तो दुख नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये जेल है ना, तो हमें हमारे अपराधों के अनुसार इस जेल में ले जाया गया और उसी के जितने 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 अपराध किए उसके अनुसार दुख मिल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सम दुख सुख क्षण, दुख और सुख को समान समझो। समान कैसे समझो? कि ये ही भगवान की कृपा है। अगर हम ये सोचकर दुख और सुख को स्वीकार करेंगे तो हमें हमारा बहुत इजी हो जाएगा जीवन। और वैसे भी वो कृपा ही है जो हमें दुख और सुख यहाँ संसार में मिल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कबीर जी की वाणी को सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, कैसे कैसे भक्ति से बनाया भगवान ने उनको। वो बोलते हैं सिर दुख सुख के माथे सिर पड़े जो राम हृदय से जाए। ये वो सुख जो भगवान को दूर कर देता है उसको उसको तो मार कर भेज देना चाहिए, सील पड़े उसके मार कर, उसको तो कुचल देना चाहिए उस सुख को जो राम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। तो कभी कभी दुख भी मिलता है ना, वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि दुख के समय तो हम भगवान के और भी निकट आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं घुटी महाराज शाश्वत महाम कि वो जो विपत्ति मुझे मिलती थी वो मुझे बार बार देते, मुझे वो दुख चाहिए बार बार, क्योंकि वो दुखों में तो बहुत जल्दी याद आ जाते हो, सुखों में कहाँ भगवान याद आते हैं, सुखों में तो हम इतना एंजॉय करते हैं और भगवान के लिए कोई समय नहीं होता। और सहा दुख सुख क्षमी, क्षमी का मतलब होता है कि वो हर किसी को माफ कर दे, माफ करके हम हमारे मन में क्या होता है दूर दूर की बातें याद होती, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा कहा था, हर वक्त याद रहता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं क्षमा कर दो। और वैसे भी तुम्हें जिसने कोई अगर पत्थर मारा है ना तो वो पत्थर वो तुम्हारा ही भेजा हुआ होगा जो उसने रिटर्न किया है, तो वो रख दो, वापिस मारोगे तो रिटर्न आएगा। अगर बुद्धिमानी यही है कि जो पत्थर आ रहा है उसको रख दो और बदली में क्या फेंको, फूल फेंकोगे तो क्या आएगा, बाद में फूल आएगा, जिधर जो फेंकोगे उधर ही मिलेगा। तो आप क्या करो, दूसरों को क्षमा कर दो कि हो सकता है कोई हिसाब किताब रह गया था, डाल दिया वापिस से मार दिया, कोई बात नहीं अब तो मुझे फूल फेंकना है ताकि वापिस से वो पत्थर का दुख मुझे न सहना पड़े। तो सबको क्षमा करो, बता कह रहे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय। वो संतुष्ट रहता है क्योंकि उसे दृढ़ निश्चय होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, दृढ़ निश्चय मतलब मैं भगवान की शरण में हूँ और जो कुछ भी भगवान यहाँ पर मुझे प्रदान कर रहे हैं वो मेरे लिए कल्याणकारी है, फिर वो संतुष्ट रहता है। कैसे संतुष्ट रहता है, तब वो क्या बोलता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। तो तुम कुछ भी दोगे मुझे वो प्यारा, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि ये मेरे प्रेमी की सौगात है। मीरा के लिए जहर का प्याला आया था और वो न केवल इतना गया कि तो गिरधर ने भेजा तुम्हारे लिए, गिरधर ने भेजा है ये सुनकर मीरा उछल पड़ी और उस जहर को भी प्रेम से पीने लगी। हमको यही सोचना चाहिए जो भी जहर मिल रहा है, जो भी कांटे मिल रहे हैं, क्या जो हमें दुख दे रहा है उसके हृदय में भगवान नहीं है? जिसके द्वारा हमें दुख मिल रहा है उसके अंदर क्या भगवान की शक्ति नहीं है? तो भगवान ही वो उसके द्वारा मुझे दे रहा है। इतना याद रखना चाहिए, किसी के अंदर शक्ति नहीं है, किसी के अंदर इतना बल नहीं है कि वो भगवान की आज्ञा और अनुमति के अलावा आपको तकलीफ दे सके। तो यदि वो भगवान की कृपा भगवान की ही कारण से दे रहा है दुख, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वो हर का सब 22 बाजारों में कोड़े खाना भी इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि उसे यकीन है कि भगवान मेरे साथ है, वो मेरा कभी भी अहित नहीं करेंगे। तो जो कुछ मिल रहा है उसे स्वीकार करना संतुष्ट दृढ़ निश्चय कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। और भगवान एक बार फिर कहते हैं मनोबुद्धि के मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करना है। यो मद भक्त समय प्रिय ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं यस मान नौ दीजते लोको लोका नौ दीजते गया। बहुत महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जिसके द्वारा कोई विचलित नहीं होता और जो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता। आज हमारा जीवन जो है ना बस दूसरों को डिस्टर्ब करने में लगा रहता है, लेकिन यदि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जो भगवान का भक्त होता है वो इतना बिजी होता है, उसका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि उसके पास टाइम कहाँ रहता है। उसको तो अपनी भक्ति में ही इतना लगा होता है, उसको अभी तो 16 माला जप करनी होती है, शास्त्र अध्ययन करने होते हैं, भगवान की सेवा करनी होती है, उसके पास टाइम कहाँ है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करे। और वो तो ये सोचता है भले जो कर रहे हैं सो करें, मैं तो केवल अपने जीवन को इस दिशा में लेके जाऊं जहाँ पर मैं भगवान के साथ अपने संबंध को निर्धारित या पुनः निर्माण कर सकूं। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करे। तो भगवान कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, वो दूसरों को कष्ट नहीं देता। याद रखिए यदि हमारे कारण किसी और को उद्विग्न होता है, कोई डिस्टर्ब होता है ना, तो हमारा बजट डिस्टर्ब होता है। कितना बड़ा हमारी हानि है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, उसकी बदली में हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाए और उसको पता भी नहीं हो। हम अगर अपनी इच्छा से भी नहीं करें ना, एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है हम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जब भगवान का भजन करते थे ना तो उनको भगवान की लीलाएं साक्षात दिखती थी। सामने राधे कृष्ण जो लीलाएं करते थे ना वो उनको दिखती थी। वो जब बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारी भगवान की लीलाएं उनको दिख रही थी। एक बार वो वृंदावन में भजन कर रहे थे तो भजन करते करते उन्होंने देखा कृष्ण जो है वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। और बांसुरी बजा रहे तो राधा रानी दौड़ी दौड़ी उस तरफ जा रही थी। और राधा रानी जब वहां से आई तो कृष्ण ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे। जो पेड़ की डाल थी उसको कृष्ण ने जोर से अपने पैर के अंगूठे से नीचे किया। और जब नीचे हो गई ना डाली तो राधा रानी ने क्या किया, उस डाली को पकड़ लिया। उनको पता था शायद नीचे है, ऐसे ही पकड़ लिया। और जैसे ही राधा रानी ने डाली को पकड़ा तो कृष्ण ने उस डाली से अपना पैर हटा दिया। और पैर हटा दिया तो डाली पुनः ऊपर हो गई। और जब ऊपर हो गई तो राधा रानी हवा में झूलने लगी और बोला कृष्ण तुम बड़े नटखट हो, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, अभी मुझे नीचे उतारो। तो ये वैसे देख रहे थे, सनातन गोस्वामी भगवान की सारी लीलाएं देख रहे होते थे। तो जब राधा क्योंकि वृंदावन परित्यज बालक एवं न गच्छति, भगवान कहते वृंदावन को छोड़कर तो मैं कभी किधर जाता नहीं हूँ। तो जब देख रहे थे तो अचानक से वहां पर एक वैष्णव भक्त गुजरे जो कि शरीर से विकलांग थे और टेढ़े होके चल रहे थे। और टेढ़े होके चल रहे थे तो सनातन गोस्वामी ने जब उनको देखा तो मतलब उसको नहीं देख रहे थे। सनातन गोस्वामी किसको देख रहे थे, राधा कृष्ण की लीला को देख रहे थे। और देखते देखते राधा रानी जो ऊपर आ गई दोनों क्या आ गई, हंसी आ गई। क्योंकि वो जो वैष्णव वहां से गुजरे थे उनको उनको तो लीला नहीं दिख रही थी, उनको खाली सनातन गोस्वामी दिख रहे थे। और उन्होंने क्या देखा, ये किसके हंस रहा है, ये मुझ पे हंस रहा है क्योंकि मैं टेढ़ा होकर चल रहा हूँ, शायद इसलिए मुझ पे हंस रहा है। तो उसको इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, घर से जाकर उसको रोना आ रहा था। बोले ये भगत है, अपने आप को भगत बोल रहा है और इसके कारण मुझे ये नहीं सोच रहा कि मुझे भगवान ने बनाया है। अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो मैं क्या करूँ, इस भक्तों को ऐसे करना चाहिए, दूसरों के ऊपर हंसना चाहिए। तो इतना हो रहा था वो घर पे जाके बार बार सोच रहा था भगवान तुमने मुझे ऐसा बनाया, देखो मुझ मेरा सब मजाक उड़ाते। तो जैसे ही उसके दिल में दुख हुआ सनातन गोस्वामी के सामने से सारी लीला गायब हो गई, वो लीला ही नहीं आ रही थी, भगवान दिख ही नहीं रहे थे। सनातन गोस्वामी विचलित हो गए, जाती थी, लेकिन अब आ रहे नहीं है, क्या हो गया मुझसे कोई आंकड़ा? तो बोला किसी वैष्णव की निंदा तो नहीं थी, बोला भजन में इतना आनंद आता है मुझे, मैं अपने भगवान के साथ संबंध निर्माण कर सकूं और सारा टाइम भगवान की लीलाओं को देखता रहता, क्या मैं दूसरों को कभी निंदा तो लगा पाऊंगे? मेरे पास इतना समय है क्या? मुझे नाम जप करने में इतना आनंद आता है, मैं तो हमेशा नाम जप करते रहता हूँ, मैं किसी की निंदा? बोला किसी वैष्णव को, वैष्णव के दिल को तो नहीं दुखाया तुमने? बोला मैं क्यों दुखाऊंगा, मैं तो किसी के दिल को नहीं दुखाया, मुझे इतना आनंद है तो अपने जीवन से कि किसी से मेरे मन में किसी के प्रति कोई भाव ही नहीं है ऐसा। क्योंकि जब कोई कृष्ण से प्यार करना शुरू कर देता है ना, तो वो प्यार जो है आपके पूरे हृदय को भर देता है। और हम क्या सोचते हैं, जब भक्त भगवान से प्यार करना लग जाता है तो वो कहता है तेरी मोहब्बत ने मेरे हृदय में इतनी जगह भी नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से भी नफरत कर सकूं। फिर उसके पास नफरत करने के लिए, निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि नफरत करेगा तो उसके लिए भी तो हृदय में स्थान देना पड़ेगा, उसको भी तो समय देना पड़ेगा। तो बोला नहीं, मैंने किसी के साथ, बोला कुछ तो हुआ है, गलती तो तुमसे हुई है, तभी तो भगवान रूठ गए तुमसे। तो तुम ऐसा करो, घर पे भोजन कराओ, वैष्णवों को बुलाओ, जो नहीं आएगा ना सब लोग उसका दिल दुखाया तुमने। उसने अपने घर पे भोजन कराया, जो आस पड़ोस के सारे भक्त थे उसके पास आए, सिर्फ वही नहीं आया जिसपे जिसको लगा था कि उसपे हंसा है उन्होंने। तो फिर सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने बोला देखो ये नहीं आया ना, इसका दिल दुखाया होगा तुमने, जाके क्षमा मांगो। वो सनातन गोस्वामी गिरे उसके चरणों में, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या मैंने आपका कोई अपराध किया? मुझे नहीं पता अपराध किया होगा, मुझे पता है, नहीं आ रहा मुझे, मेरे भगवान की स्मृति नहीं हो रही है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, बस आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे भले आप मुझे कितनी बड़ी सजा देंगे या दे दो, लेकिन बस मेरे मन में, अपने मन में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं रखो, क्योंकि मेरा भजन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फौरन से बोला कि हाँ तुमने मुझ पे हंसा था, सच्ची मैंने आपसे नहीं हंसा था, लेकिन फिर भी आपको यदि लगा, आपके मन को मेरी कारण कष्ट पहुंचा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये है वैष्णव का भाव कि अगर मेरा मैं कारण नहीं भी हूँ उनके दुख का, लेकिन फिर भी उन्हें दुख हुआ, तो उससे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। और आज हमारा भजन कम टिकता, कभी सुखमुक्ति होती है, कब नाम में मन लगता है, कारण तो यही है ना, सबका दिल दुखाते रहते हैं, सबके बारे में हम उल्टा भी तो बोलते रहते हैं, सबके सबको तो हम हार्ट करते रहते हैं, सब विचलित रहते हैं हमारी कारण, तभी तो हमारा भजन आगे नहीं बढ़ रहा है, तभी तो हमारा मन लगता नहीं है कि नहीं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, 20 साल से जप कर रहे हैं, अभी तक हृदय ही नहीं लगता, नाम में वो आस्वादन ही नहीं आता। इसका कारण तो यही है ना कि सब हमारे कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं। और भगवान कहते हैं यथा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते हर्षा मर्ष भयो द्वयते, जो ना खुश होता है ना दुखी होता है, ना चिंता करता है ना शोक करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ भी होना है वो भगवान की मर्जी से ही होना है। हम कितनी चिंता करते हैं फ्यूचर की, कितना शोक करते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं कि कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह नहीं हुआ, अभी एजुकेशन का ये है, अभी ये करना है, ये कमाना है, वो कमाना है, सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करो, अपने कर्तव्यों को, बाकी जो कुछ भी है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान ने भी कह दिया कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद अभी 5 श्लोक है लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है, बस भगवान तो इसमें यही बोल रहे हैं 15 के बाद कि जो दूसरे हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब होता है जिसका मन पवित्र होता है, मन में किसी के लिए मेल नहीं होता है। दक्ष है मतलब एक्सपर्ट है, वो जानता है कि मुझे अपने जीवन को किस तरह से सफल करना है। भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है तो उसको मैं कैसे भगवान तक पहुंचाऊं? ये मनुष्य जीवन एक कश्ती की तरह है और कश्ती समुद्र में रहे उसका ये लक्ष्य नहीं है, कश्ती मिल जाना अच्छा है, लेकिन कश्ती में बैठकर किस तरह से समुद्र को पार करता है वही दक्ष होता है। और भगवान आगे कहते हैं चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्न नहीं करता, जो मिले उसके लिए प्रयत्न अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यो न दृश्यति न गृह्यति न शोचति न कांक्षति, बार बार भगवान यही बोल रहे हैं कि जो न सुखी होता है, जो न हृष्यति न द्वेषति, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभाशुभ फल ही त्यागे, शुभ और अशुभ समस्त फलों को त्याग देता है। भक्तिमान है समय प्रिय है, वो मुझे प्यारा है। याद रखिए ये केवल बोलने की बातें नहीं है, ये वो क्वालिटीज है जो अपने अंदर डेवलप करने के बाद भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान का प्रेम जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएंगी, तब तक हम दुखों से नहीं बच सकते, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते, तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जब जिस जो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, जो क्रिमिनल होगा, उसको हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, और उसी तरह से जब तक ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएंगी ना, भगवान हमें अपने घर में जगह नहीं देंगे। केवल ये भक्त नाम का थप्पा लगा देना काफी नहीं है, अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज भी डेवलप करनी है। भगवान कहते समान शत्रु जो मित्र, अपने शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करो, क्योंकि वो शत्रु और मित्र किसका है, आपके शरीर का है, बाकी आपके साथ ना उसकी शत्रुता है और ना ही मित्रता है। इसलिए मित्र रहो सबके साथ, जो जैसा भी व्यवहार करता है, चाहे मान दे रहा है या अपमान दे रहा है, क्योंकि वो मान और अपमान तो आपके शरीर को मिल रहा है ना, आपके आत्मा को तो मान और अपमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उनमें एक जैसे रहो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख में एक समान रहो, समान संग विवर्जिता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सबके साथ समान रहो, लेकिन संग विवर्जिता, ऐसे लोगों का संग मत करो जो तुम्हें भक्ति से दूर कर लेते हैं। संग विवर्जिता, लोग ऐसे भक्तों का संग करो जो तुम्हें भगवान के करीब लेके जाते हैं। याद रखिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपको संसार की चीजों में आनंद दिखाता है, जो आपको ये बताता है कि इस वस्तु में आनंद है, इस व्यक्ति में आनंद है, सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपको भगवान से दूर कर लेता है। और जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, वही समय हमारे कष्टों का स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान आगे कहते हैं निंदा हो या स्तुति हो, कोई हमें अगर एडमायर करता है या क्रिटिसाइज करता है, एक जैसा उसको समझना है और संतुष्ट हो, ये संतुष्ट रहना है, तो आनंद से रहना है, और फिर अनेकेत अपने लिए रहने की भी चिंता नहीं करनी है। भगवान कहते हैं कि जो संसार में आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समुद्र में कभी घर नहीं बसता, लेकिन क्या समुद्र में जीव नहीं रहते। भगवान तो कहते हैं जो मेरे भक्त नहीं है, जो अपराधी है, जो दूसरों को तंग करते हैं, उनको भी, जो अपराधी है, बहुत बड़े बड़े पापी हैं, उनको भी मैं जीने के लिए सारी सुविधाएं देता हूँ, जो जानवर हैं, उनको भी रहने के लिए जगह, खाने के लिए अन्न मिलता है, तो फिर तो मनुष्य होकर इतनी अच्छी बुद्धि है तुम्हारी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और सबसे ज्यादा चिंता करते हो, है ना। कभी हमने सुना कि किसी कुत्ते को हार्ट अटैक आ गया, मर गया हो, नहीं, क्योंकि चिंता नहीं करता हूँ, है ना, दिल में उसको नहीं लगता कि कल मुझे खाना कौन देगा, कल मैं अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता हूँ, उसको वो निर्भर रहता है भगवान के ऊपर। किसी सुअर को डिप्रेशन हो गया, कभी सुना, ये सब ये सारी बीमारियां मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, उसको इतनी अंतर नहीं है कि भगवान जो कुत्ते को देता है, सुअर को देता है, क्या मुझे भूखा छोड़ेगा, मेरे हिस्से का किधर जाएगा, मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा, तो मुझे क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमं भक्तास्ते यतिः।
जो इस भक्ति पद का सेवन करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाता है। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है और अपना चरम लक्ष्य बनाता है। याद रखिए बंधु, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन एक कटी पतंग की तरह होता है, और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति है, दूसरा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता एक जीव आत्मा का। तो भगवान कहते हैं जो भक्ति के द्वारा मुझे अपना लक्ष्य बनाता है और श्रद्धा हमेशा श्रद्धाना मत करवा, श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, मुझ पर पूरा विश्वास रखता है। भगवान कहते हैं भक्ता से अति होने प्रिया, ऐसे भक्त मुझे बहुत 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 सच्चे डिवोटी आर वेरी वेरी डियर टू मी। तो यदि हमें भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो उसके लिए हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्मी मुझे प्यारे हैं, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि ज्ञानी मुझे प्यारे हैं। अंत में तो भगवान ने यही कहा कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, और भक्त बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज को हमें डेवलप करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी शांति के साथ इतना सब कुछ सुना। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंदर भी भक्ति के गुण आ सके और मैं अपने जीवन में भगवान और गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधा हरे कृष्ण महामंत्र की, युगधरम हरियाम संकीर्तन की।